Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bol Premanande, Jai Om Nitlila Pravisht Vishnupad Privarjitacharya Stotar Sat. श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद त्रिवार्षिकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। सब वेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। इस रविवार के प्रीति भोज उत्सव में आए हुए सभी भक्तों का, आजीवन सदस्यों का, सभी धर्म प्रेमियों का, श्रोताओं का, इस राधा गिरधारी मंदिर के प्रांगण में स्वागत करते हैं। जो भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए भी, और जो भक्ति में अभी पदार्पण नहीं किए हैं उनके लिए भी, भगवान के भक्तों का संग अति महत्वपूर्ण है। जो भक्ति करते हैं, प्रायः देखा जाता है कि जो भक्त हैं वे ही प्रायः रेगुलर ज़्यादा आते हैं, नए श्रोता बहुत कम आते हैं। लेकिन जो भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए भी भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। कुछ भक्त जो अपने साधन में लगे हुए हैं लेकिन सांसारिक व्यस्तता के कारण वे भक्तों का संग नहीं कर पाते हैं, और भक्तों का संग न करने के कारण धीरे धीरे उनका भक्ति में रस कम होता जाता है, और भ्रम बस यह सोचते हैं कि नहीं ठीक है, हमारा जप हो रहा है, हमारा भक्ति हो रहा है, लेकिन ये उनके मन की भ्रांत धारणा होती है। वो भक्ति से नीचे जा रहे हैं या भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं उसका वो निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भगवान के भक्तों के संग के बिना कोई कितना ही उच्च कोटि का भक्त क्यों ना हो, उसके पतन की संभावना रहती है, मतलब भक्ति से रस कम होने की संभावना रहती है। इसकी शिक्षा देने के लिए श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग दिया गया है भरत महाराज का, भरत महाराज की भक्ति में स्थिति बहुत ऊंची थी, यहाँ तक कि उनके शरीर में पुलक होता था, रोमांच भी होता था। जब भी वो भगवान का पूजा करते थे या कीर्तन करते थे तो शरीर में पुलक होना ये भक्ति की बहुत बड़ी उन्नत अवस्था है। और इतनी उन्नत अवस्था थी, उनको भक्ति में इतना आनंद में सरोबार रहते थे कि एक छत्र पृथ्वी का राज्य को भी त्याग कर वे जंगल में चले गए, उस मात्र भक्ति में आनंद। लेकिन वहां भी उनका आसक्ति एक हिरण के बच्चे में हुआ और अंततः ये स्थिति हुआ कि उनका भक्ति धीरे 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 छूट गया और हिरण में आसक्त हुए और अंत समय में हिरण का स्मरण करते करते उनका देह त्याग हुआ, जिसके कारण उनको अगला जन्म हिरण के शरीर में मिला। तो वहां पर महाराज दीक्षित की संदेह उठाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना उन्नत भक्त का ये स्थिति नहीं हो सकता। तो वहां समाधान किया गया है कि ये मात्र भक्तों को शिक्षा देने के लिए प्रसंग कहा गया है कि कोई भी भक्त अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए या भक्ति में अग्रसर होने के लिए उसको भक्तों के संग की बहुत आवश्यकता है। भक्तों का संग दीपक के समान कहा गया, जैसे एक दीपक होता है तो उसके नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन उसके बाजू में दूसरा दीपक जला दो तो दोनों दीपक के बीच नीचे अंधेरा नहीं रहता है। इस दीपक से उसका अंधेरा और इस दीपक से उसका अंधेरा चला जाता है। इस प्रकार जब भक्त संग में रहकर, भक्तों के संग में रहकर भक्ति करते हैं तो कोई भी त्रुटि है या और रस स्वादन भक्ति में होता है। इससे भक्ति में बने रहने के लिए भी साधक को भक्तों के संग की बहुत आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो भक्ति में नहीं है उनको तो अपनी जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए या माया से मुक्त होने के लिए उनको भक्तों को अपना मित्र संबंधी बना लेना चाहिए, उनके लिए तो अति आवश्यक है। तो इस प्रकार सब प्रकार से भक्तों का संग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस भक्तों का संग करने की पूरी पूरी सुविधा हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद महाराज ने दी है। विशेषकर रविवार को, वैसे तो प्रतिदिन सुबह और शाम को भगवत चर्चा होती है, लेकिन विशेष कृपा किया कि रविवार के दिन ये लवकिष्ट प्रीति भोज कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके, ये वास्तव में संतों की करुणा है, दया है। इसी से जीव सुखी होना है और किसी उपाय से नहीं। अतएव वे दया करके भगवान के भक्तों का संग प्रदान करते हैं और उस संग का जो भी लाभ उठाते हैं वास्तव में वो भाग्यशाली सुकृतिवान है, पुण्यशाली जीवात्मा है जो ऐसे सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और आइए आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रसंग चालू करने के पूर्व हमें एक वरिष्ठ भक्त से आदेश मिला है कि हमारे यहाँ के भक्तों का एक आदत है कि जैसे ही सत्संग पूरा होता है उठकर भागने लगते हैं, क्योंकि राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि इस्कॉन में दो मंत्र बहुत पावरफुल हैं, एक राधा माधव है, लेकिन ये मंत्र ऐसा है कि ये जब राधा माधव चलता है तो भक्त थोड़े दूर रहते हैं कि अभी तो राधा माधव चल रहा है, अभी तो आंगन में थोड़ा गप्पा मारेंगे। तो एक ये मंत्र है जो भक्तों को दूर रखता है भगवत कथा से, हालांकि ये बुलाने का मंत्र है कि अब आ जाओ कथा चालू होने वाली है, लेकिन भक्त लोग कुछ सोचते हैं कि अभी तो राधा माधव चल रहा है ना। और दूसरा मंत्र है महाप्रसादे गोविंद, ये तुरंत कथा से दूर करता है। हम बोलते हैं भाई रुकिए, विनती है, रुकिए रुकिए, लेकिन चल ही देते हैं, इतना प्रसाद की उन्हें प्रेम है, भगवान की कृपा से इतना प्रेम है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो मंदिर की व्यवस्था है, कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, कुछ आपके लिए निर्देशन होता है, उसको भी श्रवण करना चाहिए है? और फिर प्रसाद तो है ही है? प्रसाद तो पाना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कुछ जो व्यवस्था है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसमें पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए। मंदिर की व्यवस्था में सभी श्रोताओं को, भक्तों को पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए। और यह भी है कि प्रवचन पूरा हुआ उसके बाद हमारे लिए क्या अनाउंसमेंट है, क्या निर्देशन है, उसको सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए, ये भी हमारे भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप सभी जानते हैं पहला निर्देशन है कि हमारे मंदिर में पिछले कुछ सालों से गौर पूर्णिमा के पूर्व, अभी महाउत्सव जो आ रहा है गौर पूर्णिमा, आज से लगभग एक महीना है, तो गौर पूर्णिमा के पूर्व अर्थात मंगलवार से 18 तारीख से गौर कथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, जो प्रतिवर्ष होती है। हमारे मंदिर के वरिष्ठ ब्रह्मचारी श्रीमान सुधांशु शेखर प्रभु के मुखारविंद से ये गौर कथा होती है। तो इस गौर कथा के लिए, गौर कथा महामहोत्सव की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 तारीख से ये गौर कथा भक्ति वेदांत हॉल में होगी। प्रतिदिन 7:30 से 9:30 बजे तक गौर कथा होगी, और उसके बाद सभी के लिए जिसका सभी से प्रेम है वह प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। और प्रसाद का विशेषकर सुधांशु प्रभु बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, अपने निजी देखरेख में प्रसाद को बनवाते हैं और देखते रहते हैं प्रसाद कैसा है, कैसा बनाया, क्या क्या। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है, वो जानते हैं कि प्रवचन से इतने भक्त नहीं बनेंगे जितने प्रसाद से बनेंगे, है ना। कई भक्त हैं जो प्रसाद से भक्त, क्योंकि प्रसाद तो वास्तव में प्रसाद का बहुत प्रभाव है। तो उसके कथा के बाद सभी के लिए प्रसाद भी है, तो आप इस गौर कथा का लाभ उठाइए और चैतन्य महाप्रभु के प्रति 6:30 बजे से ये गौर कथा प्रारंभ होगी। तो आप कृपा करके 6:30 बजे यहाँ आ जाइए, शाम को 6:30 बजे से 9:30 बजे तक, 6:30 से 9:30 बजे तक होगा, और फिर सभी के लिए प्रसाद होगा। ये भक्ति वेदांत हॉल में गौर कथा होती है। और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, और सुधांशु प्रभु से मिल भी सकते हैं, पीछे ऑफिस में बैठे हैं। अगर कोई सेवा भी करना चाहता है कुछ, तो पीछे प्रभु जी अवेलेबल हैं। आइए अब श्रीमद् भागवतम स्कंध 3:5 और श्लोक संख्या, थोड़ा लिखने में ठीक नहीं लिखा है, सुखाए का सुहाय कर दिया है। श्लोक संख्या 2, विदुर उवाच, सुखाय कर्माणि करोति लोको, नाते सुखं वान्यदुपारमं वा। विदेन्द्रभूयस्तत एव दुःखम्, यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। विदुर उवाच, सुखाय कर्माणि करोति लोको, न
నే సుఖం వాణ్యదుపారమంబా విదన్ విదయంత భూయస్తః ఏవ దుఃఖం యదా త్రయోక్తం భగవాన్ వదేన్నా విదూరవాచ సుఖాయ కర్మాణి కరోతి లోకో నతే సుఖం వాణ్యదుపారమంబ విదేంత భూయస్తత ఏవ దుఃఖం యదత్ర యుక్తం భగవాన్ వదేన్నా. విదూర ఉవాచ
करने के लिए कर्माणि सकाम कर्म करोति हर कोई करता है लोक इस जगत में ना कभी नहीं ते उन कर्मों के द्वारा सुखम कोई सुख वा अथवा अन्यत
भिन्न रीति से उपारमम तृप्ति वा अथवा विदन विन्देत प्राप्त करता है। भूय उसके विपरीत तथा ऐसे कार्यों के द्वारा एवं निश्चय ही दुखम कष्ट यता जो अत्र प्रस्थितिवश युक्तम सही मार्ग भगवान हे महान वदेत कृपया प्रकाशित करें ना हमको। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। विदुर ने कहा, हे महर्षि, संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है न ही उसके दुख में कोई कमी आती है, उल्टे ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में निर्देश दें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, विदुर ने मैत्रेय से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे कि उनका मूल अभिप्राय यह नहीं था। उद्धव ने विदुर से मैत्रेय मुनि के पास जाकर भगवान के नाम यश गुण रूप लीलाओं पार्षद आदि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने के लिए कहा था। अतएव जब विदुर मैत्रेय के पास पहुंचे तो उन्हें केवल भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलतावश उन्होंने एकदम भगवान के विषय में नहीं पूछा, प्रत्युत ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जन सामान्य के लिए अत्यधिक महत्व का हो सकता था। सामान्य जन भगवान को नहीं समझ सकता, सर्वप्रथम उससे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जाल में और अधिक उलझता जाता है, जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। इस संदर्भ में एक सुंदर गीत है, जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने यह घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वस्त हो गई क्योंकि घर में अप्रत्याशित रूप से आग लगा दी गई। प्रकृति का नियम ऐसा ही है, हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर रहने से सुखी बनना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि वह इस योजना को आग लगा देता है। सकाम कर्मी अपने योजनाओं से सुखी नहीं रहता, नहीं सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप में उसे कोई तृप्ति मिलती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे ये विशेषपुण्यवारी आचार्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम इस श्लोक पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पूर्व इस प्रसंग का थोड़ा पूर्व इतिहास जान लेते हैं। यह लिखा गया है विदुर उवाच, विदुर जी ने कहा, किनसे कहा, मैत्रेय मुनि से। विदुर जी आप सभी जानते हैं कि कौरवों के महामंत्री थे, बहुत ऊंचा पद था उनका कौरवों की राज्यसभा में, और धृतराष्ट्र उनका बहुत सम्मान किया करते थे। पहले के समय में ऐसा होता था कि राजा रानी जो आती थी उनके साथ कई दासियां भी आती थी, और कभी कभी उन दासियों से भी राजा पुत्र उत्पन्न करते थे। हालांकि इनका घटना भिन्न है, लेकिन उन दासियों के पुत्रों को भी मात्र राज सिंहासन प्राप्त नहीं होता था, लेकिन बाकी सब राज सुविधा उनको प्राप्त होती, उनका भी मान सम्मान राजकुमार जैसा ही होता था, मात्र वो राजा नहीं बन सकते, बस बाकी सब राज्य की सुविधाएं उनको प्राप्त होती थी। तो ऐसे तो करने जाएंगे तो बहुत लंबा कथा है। विदुर जी का जन्म एक दासी से हुआ था वेदव्यास महाराज के द्वारा। घटना ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, और शांति दूत बनकर गए और शांति के लिए जो भगवान ने प्रस्ताव रखे, उन प्रस्ताव को, उन भगवान की शिक्षाओं को, उपदेशों को दुर्योधन ने ठुकरा दिया। क्यों भगवान की इस उपदेश शिक्षाओं को दुर्योधन ने ठुकरा दिया, क्यों नहीं माना, जबकि पितामह भीष्म जैसे महान विद्वानों को, महाभागवत को वे भगवान की शिक्षाएं अमृत तुल्य लगी, लेकिन उस अमृत तुल्य शिक्षाओं को भी, संदेश को भी दुर्योधन ने निष्ठुर बनकर ठुकरा दिया। तो वहां पर बताते हैं भागवत में के क्षीण पुण्य लेश, दुर्योधन के जो पुण्य थे वो क्षीण हो चुके थे। क्योंकि दुर्योधन को कौरव कुल में जन्म मिला तो निश्चित ये तो कहा जाता कि कुछ ना कुछ उसके पुण्य होंगे, तब इतने ऊंचे कुल में उसको जन्म मिला था। ऊंचे कुल में जन्म मिलना ये भी पुण्यों के सिवा नहीं मिल पाता, तो निश्चित उसके पुण्य तो थे, इसीलिए उसको कौरव कुल में जन्म मिला। ये बहुत ऊंचा कुल माना जाता है, भरत महाराज का वंश है। तो लेकिन उसके पुण्य जो थे अब वो क्षीण हो रहे, क्षीण हो गए थे, ऐसा कहा गया। इसके पूर्व एक श्लोक आता है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी के आंखों से अश्रुपात हो रहा था, और उसके अश्रुपात से उसके आंखों का काजल धुला जा रहा था, उसके अस्तन का कुमकुम धुला जा रहा था। तो वहां पर आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ये द्रौपदी के आंखों का काजल या उनके अस्तनों का कुमकुम ही नहीं धुल रहा था, कौरवों की पत्नियों के मांग का सिंदूर धुल रहा था, अर्थात कौरवों के जो पुण्य थे वो क्षीण हो रहे थे, सब क्षीण हो गए, उसी समय क्षीण हो गए थे उनके है? तो शत पुण्य लेश, लेश मात्र भी उनके जो थोड़े भी बचे थे वो भी क्षीण हो गए, और इस कारण वो भगवान की शिक्षाओं को, अमृत तुल्य शिक्षाओं को भी नहीं माना। यहां पर एक शिक्षा प्राप्त होती है समाज को, भगवान की जो भी शिक्षाएं हैं भगवान का जो भी संदेश है वो वास्तव में जीव के लिए अति मंगलकारी है, अमृत तुल्य है। लेकिन जिन लोगों के अंचित भी पुण्य नहीं है, ऐसे लोग इसको स्वीकार नहीं करते। भगवत गीता भगवान का संदेश है, भागवतम भी भगवान का संदेश है, लेकिन जिनके बिल्कुल पुण्य नहीं है, कुछ सुकृति नहीं है, वे लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। हालांकि भगवान की शिक्षाएं हर प्रकार से जीव का मंगल करने वाली है। हम भागवत में देखते हैं, एक बहुत सुंदर प्रसंग है दशम स्कंद में, सम्यंतक मणि का। सम्यंतक मणि लेकर जब सत्राजीत द्वारिका में प्रवेश किया तो भगवान ने उससे कहा कि हे सत्राजीत, ये मणि तुम राज खजाने में जमा करा। लेकिन उस सत्राजीत ने भगवान की इस बात को ठुकरा दिया, नहीं माना। वो सोचा कि इसमें कुछ कृष्ण का बेनिफिट है, इसको मैं क्यों दूं कृष्ण को, मैंने अपने तपस्या के बल पर इसको प्राप्त किया है, मैं मंदिर में क्यों दे दूं, डोनेशन में कैसे दे दूं, हमने मेहनत करके प्राप्त किया, हम कैसे कृष्ण को दे दें। तो इस प्रकार सत्राजीत ने भगवान की बात को ठुकरा दी। हालांकि भगवान ने उसके मंगल के लिए कहा था कि भले ये तुम प्राप्त किए, लेकिन ये इतना बड़ा मणि रखला तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, तुम्हारे लिए इसका खतरा हो सकता है, इसलिए तुम ये राज खजाने में जमा करा दो। भले इससे निकलने वाला सोना तुम लेते जाना, लेकिन इस भगवान की संदेश जो उसके लिए अमृत तुल्य था, उसका अवहेलना किया। और परिणाम ये हुआ कि उस मणि में जो भी गुण थे, गुण दिखाए गए उस मणि के, कि ये मणि जहां रहेगी, इसकी जहां पूजा होगी, ये नित्य प्रतिदिन 170 पाउंड सोना भी देगी, साथ साथ में उससे किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, साथ साथ में वहां कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, और भी कई उस मणि की विशेषताएं बताई गई। लेकिन अगर उसका पूरा प्रसंग देखे तो सब उसके विरुद्ध हुआ। अकाल मृत्यु भी हुआ, दोनों भाइयों का अकाल मृत्यु हुआ, इसके साथ साथ और भी दुर्घटनाएं घटी, दुख भी हुए। तो कहने का अर्थ है, भले किसी वस्तु में कोई गुण है या कुछ भी है, लेकिन जब हम भगवान की अवहेलना करके उस वस्तु को प्राप्त करते हैं तो निश्चित हाँ उसको गुण के बदले वो अवगुण उससे मिलता है। जैसे धन है, धन में गुण भी हैं, लेकिन अगर उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं तो व्यक्ति धन के मार्फत भी अपने को मुक्त कर सकता है। जैसा यहाँ पर ये सब लिखा है, देख रहे हैं ना आप, अपने पूर्वजों को तार सकता है, खुद भगवान धाम का अधिकारी बन सकता है उस धन के कारण, लेकिन उसको भगवान की सेवा में उपयोग करे तो। अगर वो उसके विपरीत उपयोग करता है तो वही धन उसको नरक में ले जाता है, हाँ, उसका पतन कराने वाला होता है। तो इस प्रकार भगवान की शिक्षाओं को अवहेलना करके व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो दुर्योधन ने भगवान की इस अमृत तुल्य शिक्षाओं को भी अवहेलना किया, और जब अवहेलना किया उसके बाद जब भगवान चले गए तो उसके बाद धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया सलाह लेने के लिए। और विदुर जी जब आए तो विदुर जी ने बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान किया, विदुर जी ने भी बहुत सुंदर शिक्षा धृतराष्ट्र को प्रदान किया। रूपा जी लिखते हैं कि धृतराष्ट्र जो था वो आंखों से काया से तो अंधा था ही, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। शरीर से अंधा होना व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से या आध्यात्मिकता से अंधा होना उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो धृतराष्ट्र ऐसा था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा था। तब विदुर जी ने आकर उनको बहुत सुंदर शिक्षा दिया कि हे भ्राता श्री, आप महाराज युधिष्ठिर का अधिकार लौटा दो, उनके जो राज्य अधिकार है उसको लौटा दीजिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है वो अजात शत्रु हैं, और साथ साथ में जो यादव हैं वे उनको अपना परिजन समझते हैं। धृतराष्ट्र को एक तरह से आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा हो कि मैं युद्ध करके या हमारा पुत्र युद्ध करके जीत जाएगा, तो वो यादव गण जो हैं, यादव पांडवों को अपना परिजन समझते हैं, और यादवों के प्रति कृष्ण है, कृष्ण का भी उनके प्रति बहुत लगाव है, और यादव जो इस समय पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली राजा शक्तिशाली हैं, उन यादवों ने इस पृथ्वी के बहुत शक्तिशाली राजाओं को प्राप्त किया है, वे यादव पांडवों को अपना परिजन समझते हैं, और उन यादवों के पति स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो एक तरफ से ये भी धृतराष्ट्र को कहा कि तुम किसी भी प्रकार से पांडवों को प्राप्त भी नहीं कर सकते, इसलिए ये अगर तुम्हारे अंदर भ्रम है तो इसको भी त्याग दो। और इस प्रकार शिक्षा देते हुए विदुर जी ने कहा कि तुम अपने पुत्र का पाल पोष, उस पुत्र को पोष रहे हो, एक दोष को पोष रहे हो, पाप को पोष रहे हो। तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है वो वास्तव में साक्षात पाप है, अपराधी है। क्या अपराधी है? वो भगवान कृष्ण की अवहेलना करता है। वास्तव में संसार में जो भगवान की अवहेलना करता है वो सबसे बड़ा पाप है। भगवान की अवहेलना का अर्थ शास्त्र की अवहेलना करता है। शास्त्र क्या है? सच्चा भगवान के वचन है, तो शास्त्रों की अवहेलना करता है। कई कई कहा जाता है कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है। वास्तव में भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक नहीं है, शास्त्र को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो इस प्रकार तुम्हारा पुत्र जो है वो अपराधी है, पापी है, उसने साक्षात भगवान श्री कृष्ण की अवहेलना की है, उनसे ईर्ष्या करता है, और ऐसे पुत्र को तुम पाल रहे हो, ऐसे पुत्र को तुम पाल रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि उसके प्रति मोह न रखते हुए तुम महाराज युधिष्ठिर का अधिकार लौटा दो। जब इस प्रकार बोल रहे थे, वहां पर प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है कि पुत्र, पुत्र का अर्थ होता है जो अपने पूर्वजों को तार दे, या अपने पूर्वजों को पुत्र नामक नरक में जाने से बचा ले, वो पुत्र होता है। तो ये पुत्र पूर्वजों को कैसे तारता है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करके वो अपने पूर्वजों को तार सकता है, ये विधि है। भगवान को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके वो अपने पूर्वजों का उद्धार कर लेता है। लेकिन ये तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान विष्णु का अवहेलना कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, भगवान की अवहेलना कर रहा है। फिर ये तुम्हारा पुत्र पुत्र नहीं, ये तो मूत्र है। लेकिन इस प्रकार विदुर जी के अमृत तुल्य वचन जब धृतराष्ट्र को कह रहे थे, उसी समय वहां पर ये दुर्योधन आ पहुंचा, और दुर्योधन ने जब इस प्रकार के वचन सुने तो उसके होठ फड़फड़ने लगे, और वो बहुत कुपित हो गया, उसकी आंखें लाल लाल हो गई, और कुपित होकर बहुत ही दुर्जय वचन बोलने लगा, बहुत ही कठोर वचन बोलने लगा, इस दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया? ये जिन हमारा अन्न खाता है और पांडवों की चापलूसी करता है, मतलब ये जिनका अन्न खाता है उनका ही विरुद्ध कार्य कर रहा है। एक तरफ से कहा कि ये नमक हराम है, ऐसा शब्द कहा, ये जिनका अन्न खाता है, अन्न हमारा खाता है और पांडवों को हमारे शत्रुओं का चापलूसी करता है। ये वास्तव में ये शब्द बहुत कठोर है। कभी कभी व्यक्ति को गुजराती में कहावत है कि लाठी मार दो, वो इतना सहन कर लेता है, लेकिन शब्द होते हैं ये कभी कभी लाठी और बाणों से भी तीव्र होते हैं। तो ये दुर्योधन के जो शब्द थे ये बाणों से भी तीखे थे, और विदुर जी ने जैसे इन शब्दों को सुना, तुरंत ही विदुर जी ने अपना दुर्योधन ने कहा कि इसको आने के लिए किसने कहा था, ये हमारा अन्न खाता है, पांडवों की चापलूसी करता है, जासूसी करता है, इसको यहां से निष्कासित कर दो, बाहर निकाल दो, मात्र इसके प्राण मत लो। बहुत कठोर, ये भी कठोर। जैसे ही विदुर जी ने ये शब्द सुने, विदुर जी ने अपना धनुष बाण वहीं भवन के द्वार पर रख दिया और उसके बाणों से आहत होकर, उसके वचनों से आहत होकर वो विदुर जी वहां से निकल गए। लेकिन वहां पर एक बहुत सुंदर गुण विदुर जी का बताया गया है और प्रभुपाद जी भी टीका में उस पूरे श्लोक में उस एक शब्द को लेते हैं कि विदुर जी यह सुनकर निकल गए लेकिन वे उसके शब्दों को बुरा नहीं माने, बहुत अच्छा माने दुर्योधन के शब्दों कि तुम्हारे इन शब्दों के कारण मैं इन भौतिक कार्यकलापों से अब निवृत्त हो रहा हूं। भौतिक कार्यकलाप जो हैं वे वास्तव में जीव को कष्ट ही देने वाले, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, भौतिक कार्यकलाप कष्ट देने वाले हैं। तो तुम्हारे इन शब्दों के कारण मैं इनसे निवृत्ति लेता हूं। और मन ही मन विदुर जी ने दुर्योधन को धन्यवाद दिया। ये भक्त का स्वभाव, भक्त का गुण होता है। भक्त हर परिस्थिति को कैसे पॉजिटिव लेना या किस प्रकार हर परिस्थिति को कृष्ण की कृपा समझकर लेना, ये भक्त का गुण होता है। जब महाराज परीक्षित को भी श्राप का समाचार मिला तो उन्होंने, महाराज परीक्षित ने कृष्ण का धन्यवाद किया कि वास्तव में ये कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ये भक्त का जो आचरण होता है अभक्त का विपरीत होता है। अगर इस संसार में किसी को मृत्यु का समाचार मिले या दुर्योधन जैसा ऐसा कटु वचन बोले तो वास्तव में मरने तुल्य, वो अगर शक्ति हो तो उसको मार देगा, नहीं तो खुद मर जाएगा, ऐसे ये शब्द। लेकिन विदुर जी ने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया। भक्त को ये शिक्षा लेना चाहिए कि हर स्थिति को किस प्रकार कृष्ण की कृपा समझा जाए, हर व्यक्ति के कटु वचन को भी किस प्रकार, जैसे आज जो महाराज का नामा अमृत चल रहा है उसमें महाराज ने प्रश्न पूछा सबसे कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे आप दुखी हैं या कुछ अच्छी घटनाएं हुई जिसके लिए आप कृष्ण का धन्यवाद करना चाहते हैं या कुछ बुरी घटनाएं हुई उसके लिए कृष्ण का धन्यवाद करना चाहते हैं। तो भक्तों ने अपने दोनों प्रकार के एक्सपीरियंस किए कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है तो उसके लिए विचार करना चाहिए कि इस घटना के पीछे कृष्णा मेरा क्या हित करना चाहते हैं, ये भक्त को विचार करना चाहिए। देखने में बाहर से लगता है कि ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भक्त को सोचना चाहिए कि भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं करते, हर घटना के पीछे जरूर उसका कुछ ना कुछ हित होता है। तो इस प्रकार विदुर जी ने देखा कि ये दुर्योधन जो हमको ऐसे कटु वचन, निश्चित इसमें हमारा हित है, तो इस प्रकार हित सोचकर दुर्योधन को इसके लिए धन्यवाद दिया और विदुर जी वहां से निकल गए और निकलकर वे तीर्थाटन में चले गए। तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी जब वृंदावन पहुंचे तो उनका भेंट उद्धव जी से हुआ। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। और उद्धव जी से जब भेंट हुआ और उद्धव जी से भेंट हुआ दोनों मिले और उद्धव जी से उन्होंने कृष्ण के विषय में चर्चा करने को, कृष्ण के विषय में प्रश्न किए। लेकिन उद्धव जी को जब कृष्ण के विषय में प्रश्न किया गया तो उद्धव जी ने सोचा कि वास्तव में विदुर जी है हमारे पिता के तुल्य हैं, बहुत बड़े हैं, उनको मुझे शिक्षा नहीं देना चाहिए। लेकिन भगवान ने उद्धव जी से कहा था उस प्रकार भगवान के आदेशों का पालन करते हुए, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि भगवान ने जो भगवान इस धराधाम से परायण कर रहे थे तो आपको याद किया, और आपको याद करते हुए उन्होंने मुझे कहा था कि आपको वृंदावन में विदुर जी से भेंट होगी, आप विदुर जी से कहना कि आप भगवत कथा, आपको हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से भेंट होगी और मैत्रेय जी से आप भगवत कथा का श्रवण करना। तो ये बात जब विदुर जी ने सुना तो विदुर जी का शरीर भी गदगद हो गया, उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे कि मेरे में क्या योग्यता है, भगवान ने परायण करते समय मुझे याद किया था, भगवान ने मुझे याद किया था। कितना विदुर जी को आनंद, कितना पुलक हुआ होगा। और इस प्रकार कृष्ण की दया देखकर, कृष्ण का करुणा देखकर विदुर जी गदगद हो गए। और इस प्रकार फिर विदुर जी कुछ दिन वहां पर रहे और उसके बाद भ्रमण करते हुए वे जब हरिद्वार में पहुंचे तो हरिद्वार में उनका भेंट मैत्रेय मुनि से हुआ। जब मैत्रेय मुनि से विदुर जी का भेंट हुआ, वहां पर विदुर जी भेंट करने के बाद तुरंत ही उनसे ये प्रश्न करते हैं। ये श्लोक जो है ये लेने का वास्तव में इस श्लोक के पीछे उद्देश्य मेरा यही था कि अभी अभी भाईंदर में गीता क्रेश कोर्स हुआ था, तो गीता का परिचय कराने के लिए कमलोचन प्रभु ने जब प्रवचन चालू किया तो 95% खाली भौतिक विषय की बातें चर्चा की। विचार कर रहा था कि ये तो लोग समझेंगे कि ये हम तो इधर गीता का प्रवचन सुनने आए हैं और ये तो ये क्या बता रहे हैं, ये तो क्या बता रहे हैं, संसार में लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे दौड़ भाग कर रहे हैं, कैसे लटक के जा रहे हैं, किस प्रकार का उनका स्थिति है, क्या है ये, बस सब यही बातें थी। अंत में खाली 5% गीता के विषय में था, 5% और 95%। तो मैं तभी से विचार कर रहा था कि ये तो लोग समझेंगे कि हाँ लिखा तो गीता क्रेश कोर्स और अंदर तो ये तो सब भौतिक बातें हो रही है। ऐसा क्यों? अब ये जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहले ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विदुर ने मैत्र से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे। ये सामान्य प्रश्न है जनता के लिए, ये जनता का प्रश्न है कि लोग इस संसार में दुख भुगत रहे हैं, काम तो कर रहे हैं सुख के लिए लेकिन वास्तव में दुख के लिए तो यहाँ कोई कार्य करता नहीं है, सुख प्राप्त करने के लिए। अगर कोई कार्य कर रहा है दुख को कम करने के लिए तो उसके पीछे भी उद्देश्य तो सुख का ही है कि दुख को नष्ट किया जाए तब सुख मिलेगा, और दुख को कम करने या नष्ट करने के लिए भी अगर कर्म करता है तो वो भी कारण माना जाएगा कि वो सुख प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। तो सुखाय कर्माणि करोति लोको, यहाँ पर संसार में सब लोग सुख प्राप्त करने के लिए कार्य, तो ये तो एक साधारण प्रश्न है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस बात पर मैं लिखा कि विदुर जी ने ये प्रश्न इसलिए पूछा, हालांकि विदुर जी का इस पृथ्वी पर आना कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए ही था, भक्तों का संग और कृष्ण का कथा, ये विदुर जी धर्मराज के अवतार हैं। और धर्मराज हम जानते हैं उनका स्थिति जो है यमपुरी में, मात्र पापियों से भेंट होता है, पापियों के पाप सुनना और उसके अनुसार उनको सजा देना, बस यही उनका रूटीन रहता है। और है कौन धर्मराज, भगवान के महान भक्त हैं। तो उन्होंने इच्छा किया कि हे प्रभु बस ये पापियों के पाप सुनना और उनको ये दंड देना, इसी में ये जीवन चला जाएगा क्या, हमको आपके भक्तों का संग और आपकी कथा का श्रवण कब प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। ये ट्रेन में लटक लटक कर मीरा रोड से चर्च गेट से मीरा रोड में ये धक्के खाते खाते ही जीवन चला जाएगा, या कभी हमको भगवान का कथा भी सुनने का अवसर मिलेगा, या कभी भक्तों का संग करने का भी अवसर मिलेगा, ये जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा है। ये अभी लोगों का इच्छा होता है, अगर ट्रेन में लटकते हुए या धक्का खाते हुए भी कभी किसी व्यक्ति का ऐसा इच्छा होता है कि क्या यार इसी में जीवन चला जाएगा, या कभी हम भी कीर्तन में जाकर नाचेंगे या भक्तों का संग में या कथा का संग। अगर ऐसा किसी व्यक्ति का इच्छा होता है तब जमना जाएगी अब ये मनुष्य है, तब उसका मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है, तब तक नहीं। अगर किसी का इच्छा ही नहीं होता इसके लिए तो समझना चाहिए कि अभी तक ये पशु के ही जीवन में जी रहा है। तो धर्मराज का ये इच्छा हुआ, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए अंतरंग कारण ये विदुर जी का यहाँ। तो कृष्ण कथा सुनने के लिए भक्तों का संग और कृष्ण कथा भक्तों के संग में कृष्ण का, हालांकि आगे जाकर कृष्ण का ही विषय में पूछेंगे, कृष्ण के अवतार के विषय में वो, लेकिन शुरू यहां से कर रहे हैं। तो ये रूपा जी लिखते हैं कि इसका कारण ये है कि भगवान की कथा सुनने के पहले या भगवान का कोई भी लीला बताने के पहले सुनने के पहले लोगों को पहले उनकी भौतिक स्थिति क्या है उसके विषय में उनको ज्ञान होना चाहिए कि हम किस प्रकार की स्थिति में जी रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है, हम मायाबद्ध जीव की भौतिक जगत में क्या स्थिति है, किस प्रकार वो कर्म करने के लिए प्रयास कर रहा है, किस प्रकार सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, और किस प्रकार वो प्रयास के द्वारा मात्र दुख ही प्राप्त कर रहा है। इस स्थिति को बताना चाहिए, इस स्थिति से व्यक्ति को अवगत होना चाहिए। जब व्यक्ति इस स्थिति से अवगत होता है कि अरे मैं तो फंसा हुआ, ये सोच रहा हूं कि मैं ये कार्य करके सुखी हो जाऊंगा, ये करके सुखी हो जाऊंगा, मैं ये डिग्री प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, मैं इतना धन प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास ये गाड़ी आएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा मोबाइल ये नहीं वो बड़ा मोबाइल आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा इस लड़की के साथ शादी हो जाएगा तो मैं, इस प्रकार की स्थिति वो सुखी होने के लिए प्रयत्न में लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो ये जो भौतिक बद्ध अवस्था में जीव की स्थिति है उससे पहले उस जीव को अवगत कराना चाहिए, बाद में आप कृष्ण का कथा दो तो उसका रुचि लगेगा उसमें। जब तक अपनी व्यक्ति सोचता है कि मैं तो इन कार्यकलाप दुख मिल रहा है, लेकिन सोचता है कि ये तो दुख इसलिए है अगर थोड़ा ये करूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, उस गधे जैसा, वो गधा होता है, एक गधे ने स्ट्राइक कर लिया कि अब हम कल से इस धोबी का काम नहीं करेंगे, कुछ मजा ही नहीं है, बस रोज आओ जाओ आओ जाओ, क्या इसमें। तो उसने स्ट्राइक, वो धोबी ने गट्ठर रखा तो बोला नहीं हम स्ट्राइक पर हैं, हम नहीं करेंगे काम। तो धोबी ने जा दिया भैया, हाँ वो समझ गया, उसने कहा ठीक है इसको थोड़ा लोभ दे देते हैं। तो वो धोबी ने गधे के गले में एक लकड़ी बांधा, ऐसा वो फोटा होता है तो इसको समझ सकते हैं, बातों से नहीं समझ में आता ये बात है, ऐसा गधा है और गधा के गले में एक लकड़ी बांध दिया और लकड़ी के आगे गाजर लटका दिया ताजा, तो ऐसा लटक रहा है लकड़ी बांधा हुआ, हाँ अब करूंगा क्योंकि अब मुझे ये गाजर मिलेगा। तो वो गठर रखा हुआ वो चल रहा है गाजर को लेने, तो वो जैसे चल रहा है वो गाजर तो और आगे आगे जा रहा है, अब फोटो देखेंगे तो पता चलता है। तो वो तो मिलता तो नहीं है गाजर, लेकिन उस गाजर को प्राप्त करने के लिए वो चल रहा है कि बस दो कदम चलूंगा तो मिल जाएगा ना। अभी हमारा लड़का सीए नहीं बना है, सीए बनेगा तो फिर क्या, फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो ठीक है, वो ऐसा नौकरी लग जाएगा तो ठीक है, या मेरे को अभी थोड़ा भाड़े का रूम है फ्लैट में आ जाऊंगा तो फिर क्या प्रॉब्लम, फिर तो बस सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वास्तव में वो जाने के बाद भी सुखी होता नहीं है, वो गाजर की तरफ, वो तो सुख तो आगे का आगे ही चलता है। जैसे उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर रेगिस्तान का, हमने तो ये देखा हुआ है, हम जो रहते हैं हमारा जन्म स्थान ही रेगिस्तान, ऐसा हुआ हमारे गांव में बहुत रेती है, इतना इतना पांव चला जाता है, इतना धूल है हमारे गांव में, बहुत धूल है। तो हमने देखा है कि ऐसा धूप गिरती है तो धूल में खड़े हैं तो दूर से जो बालू के कण होते हैं उस पर जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो निश्चित ऐसा लगता है कि वो जल है, आप प्रत्यक्ष देखेंगे, हमने देखा है प्रत्यक्ष, ऐसा लगता है कि ये जैसे जल है, ऐसा आभास होता है। तो रेगिस्तान में हिरण को ऐसा आभास होता है कि यो प्यासा है तो वहां जल है, और वो भाग के जाता है वहां पर, पहुंच जाता है, लेकिन देखता है वहां तो रेती है, तो फिर सर उठा के देखता है तो दिखता है आओ वो वहां जल है, फिर वहां भाग कर जाता है वहां भी वही रेती है। जल का आभास होता है, जल होता नहीं। इसी प्रकार इस जगत में सुख का आभास होता है, वास्तव में सुख है नहीं, उल्टा दुख आ जाता है। अब समय ना होने के कारण एक एक बात को पृथक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा एक, आप देखते हैं डॉक्टर, हम सोचते हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर हो जाए तो ओ सबसे बड़ा, लेकिन हमने डॉक्टरों से भेंट की, बोलता ऐसा थर्ड क्लास जीवन है, सोने नहीं देते हैं, रात को 2 बजे फोन आता है, अभी 1 बजे आकर सोया और 2 बजे फोन आता है, नींद आ रहा है, और के उनकी गलती से मरीज मर गया और दोष हमारे ऊपर आ गया। क्या थर्ड क्लास जीवन है, क्या बेकार। अभी उसको आमदनी होता है, पैसा आया, लेकिन उस पैसे से सुख भोगने के लिए उसके पास टाइम कहां। वही मरीज देखो, सुबह से शाम तक मरीज देखो, 1 घंटा सोने के लिए 2-4 घंटा आता है, उसमें भी फोन आते रहते हैं, कहां सुख है। और हम लोग समझते हैं कि जब डॉक्टर बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। बहुत बहुत सी ऐसी, और कितना परिश्रम करता है, 25 साल तक सोता नहीं है, रात को 2 बजे तक सोता है, सुबह उठ के पढ़ता है, कहीं शादी ब्याह उस सब है तो वो जाता नहीं, नहीं मेरा तो एग्जाम आने वाला, मैं नहीं जाऊं, तो वो उस समय भी वो कष्ट ही उठाता है, और कष्ट उठाने के बाद वो सोचता है कि वो मैं बन गया डॉक्टर तो फिर तो कोई तकलीफ नहीं, और डॉक्टर बनता है तो फिर तो वही मरीजों की गालियां, वही दुख, वही दुख। तो दुख को सुख मानता है, दुख को सुख मानता है। जैसे कुत्ता होता है, वो आपने देखा होगा कुत्ता कभी कभी हड्डी होता है, सूखा हड्डी। अब ये सब उदाहरण गांवों में देखे जाते हैं, यहां पर ये मिलते, यहां तो रस्ते में कोई हड्डी पड़ा होता नहीं, लेकिन गांव में इसलिए कहा गया है कि भागवत को समझना है तो गांव या प्रकृति के नजदीक जितना आप रहते हो तो समझ में आ जाता है। हमने तो छोटे छोटे गांव में आप लोग सबने देखा होगा जो गांव से आए हैं, कुत्ता कभी कभी दोनों पांव से वो हड्डी को पकड़कर ऐसा बड़े चाव से चूसता रहता है, और दूसरे कुत्ते को आते देख मेरा हड्डी ले लेगा, तो वो लेके फिर भाग जाता है, फिर एकांत स्थान में जाकर फिर सूखा हड्डी। तो उसमें क्या आनंद उसको आता है, क्या मजा आता है, वो सूखा हड्डी आनंद क्या होता है, वो सूखा हड्डी को कड़ करता, उसके तलवे में वो हड्डी का कोना लगता है, लगने से उसको छीलकर खून आता है, और वो खून उसकी जीवा पर पड़ता है तो वो समझता है कि हड्डी में मजा है। ये उसका भ्रम है, गाड़ी में मजा है, उसमें मजा है, उसमें मजा है, स्त्री में मजा है, वो किसी में मजा नहीं है। भागवतम में मुचकुंद महाराज कहते हैं कि प्रभु स्त्री सोचती है कि पुरुष में सुख है, और पुरुष सोचता है कि स्त्री में सुख है, तो अगर स्त्री में सुख है तो वो स्त्री क्यों सोचती है पुरुष में सुख लेने के लिए, सुख दोनों में नहीं है, पुरुष सोचता है स्त्री में सुख है और स्त्री सोचती है पुरुष में सुख है, इसलिए एक दूसरे का संग चाहते हैं। अगर स्त्री में सुख होता तो वो पुरुष का संग क्यों चाहती, और पुरुष में सुख होता तो वो स्त्री का संग क्यों चाहता, सुख दोनों में नहीं है। लेकिन प्रभु, हे प्रभु, आपकी माया द्वारा दोनों ठगे जा रहे हैं, सुख है ही नहीं। कुत्ता सोचता है हड्डी में सुख है, और हड्डी में सुख नहीं है, सुख तुम्हारा तलवा घिस रहा है, ये है सुख, सुख है नहीं। तो वास्तव में व्यक्ति को पहले अपनी भौतिक बद्ध स्थिति से वाकिफ होना चाहिए कि जिस सुख के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और वास्तव में और दुख को कम करना चाहते हैं, तो ना तो वो दुख कम होते हैं, और दुख कम नहीं होते तो सुख का तो प्रश्न ही नहीं है। पर हाँ, सुखाय कर्मा, इसलिए विदुर जी ने ये प्रश्न किया, और इसलिए कमलोचन प्रभु भी पहले सब भौतिक स्थिति बता, आपका स्थिति कैसा है। तो वास्तव में हमारा इस संसार में कैसा स्थिति है और किस प्रकार हम सुख प्राप्त करने के लिए ठगे जा रहे हैं, इस स्थिति से पहले हमको जनता को वाकिफ करना चाहिए या हमको वाकिफ होना चाहिए। नहीं, नहीं, संसार में सुख नहीं है, संसार में कितना भी धन मिल जाए, कुछ भी हो जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। इसलिए वास्तव में सुख की प्रक्रिया क्या है, जैसे सुखाय कर्माणि करोति लोग, कर्म, सुख के लिए कर्म करते हैं, कर्म जैसे तीन प्रकार के कर्म होते हैं, आपने सुना होगा कर्म, सत्कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन कर्म होते हैं। तो दो कर्म जो हैं सत्कर्म और विकर्म, या उसको सुख, ये जो दो कर्म, कर्म का अर्थ होता है साधारण कर्म या शास्त्र अनुमोदित कर्म, लेकिन सकाम कर्म, इसका कर्म का परिभाषा प्रभुपाद जी भी सकाम कर्म ही करते हैं। तो सकाम कर्म और विकर्म, ये दोनों को समझिए पहले। सकाम कर्म कहते हैं शास्त्र अनुमोदित, शास्त्र के अनुसार कर्म करना, और विकर्म कहते हैं शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना। लेकिन ये दोनों से व्यक्ति सुखी नहीं होता। कैसे? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने आप को सुख लेने के लिए जो व्यक्ति शास्त्र अनुसार कर्म करता है उसको सकाम कर्म कहते हैं या कर्म कहते हैं। कर्म मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्र के अनुसार कर्म करना, लेकिन हेतु क्या? इंद्रिय तृप्ति। और कोई कोई लोग होते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्र के विरुद्ध कर्म करते हैं, तो वो भी कर्म है। और दोनों जीव को बांधने वाले हैं, दोनों बांधने वाले, और दोनों से सुख प्राप्त नहीं होता है। दोनों बंधन का, एक को समझो लोहे का बंधन है तो दूसरे को सोने का बंधन है, लेकिन दोनों बंधनकारी हैं और दोनों सुख देने वाले नहीं है। इसके लिए तीसरा बताया, तीसरा कर्म है अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है सीधा, अगर एक शब्द में कहें, प्रभुपाद जी तो सीधा करते हैं इसका अर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म का किया जाता है उसको अकर्म कहते हैं। अकर्म का अर्थ है जो बंधनकारी नहीं है, जो हमको मुक्ति दिलाने वाला है, कर्मों से मुक्ति दे, भव बंधन से मुक्ति दे, वो अकर्म। अकर्म मतलब वो कर्म है ही, मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है वो अकर्म। तो उसी से कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और वो करने वाला जीव भी प्रसन्न हो सकता है, सुखी हो सकता है। लेकिन ये दूसरे जो दो कर्म है, कर्म और विकर्म, इससे जीव सुखी नहीं होता, बंधन में ही पड़ता है। तो कुछ लोग कहते हैं, नहीं नहीं आप ऐसी कैसी बात करते हो, सुख तो है ही नहीं यार, बहुत बड़ी गाड़ी है 25 लाख की और उसमें जा रहा है, 50 लाख की बंगला है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर स्त्री है, तो सुख तो है ही नहीं यार, ऐसी कैसी बात करते हो, ये दुख है। सुख है, लेकिन वो कैसा सुख है उसको जानिए। हालांकि दो उदाहरण देने चाहते हैं लेकिन एक ही उदाहरण दे। जैसे हमको खुजली आता है, तो खुजली आता है तो जब हम खुजलाते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन खुजलाते 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 आखिर में अंत में दर्द चालू हो जाता है। अब खुजलाते रहिए खुजलाते रहिए, अरे बाप रे, वो जलना चालू हो जाता है। बस वो ही है सुख, देख लीजिए, वो सुख भोगता है भोगता है भोगता है, अंत में रोना चालू हो जाता है, रोते ही। कमलोचन प्रभु बता, किसी को फोन कीजिए तो बोले कैसे हैं, बस ठीक हूं मैं, ठीक हूं, आई एम वेल। लेकिन और फोन मोबाइल चालू रखिए तो बट, लेकिन थोड़ा समस्या है, ये हो गया वो हो गया, मैंने जो जिसको पैकेट बेचा था उसका उठमना हो गया, वो सुखी कहने के बट कहने के बाद जो चालू होता है वो सब ठीक हो, लेकिन बाद में वो चालू करता है, ये हो गया वो हो गया, जिससे हमने तो सोचा था कि शादी करने से सुख मिल जाएगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष हमने देखा है, लव मैरिज किया और बस पिताजी की बात को भी नहीं माना, वो भी नहीं माना, मैं तो इसी के साथ शादी करके सुखी हो सकता हूँ। अब वो रोज झगड़ते हैं, मेरा कर्म फूटा था कि मैंने तेरे साथ शादी किया, वो लड़का कहता है मेरा कर्म फूटा था कि मैंने पिताजी की बात नहीं माना, हमारे समाज की लड़की बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, वो मिल रही थी और मैंने तेरे साथ शादी किया, मेरा भाग्य फूटा था। ये बिल्कुल मैं मेरी तरफ से एक भी शब्द नहीं कह रहा हूँ, आपको सुनना है तो मैं सुना सकता हूँ। हमारे एक भक्त हैं विश्वात्मा प्रभु, उनके ऊपर एक परिवार रहता है मारवाड़ी परिवार, और उसने मराठी से शादी किया है, तो वो हमको रोज बताते हैं, तो उनका रोज झगड़ा होता था, तो वो ही बोलते हैं कि मेरा कर्म फूटा था, वो बोला मेरा कर्म फूटा था। तो ये तो शादी तो किया था सुख के लिए, लेकिन ठीक है थोड़ा थोड़ा खुजला है, सुख मिला और बाद में रोना चालू। इसे वास्तव में जो लोग ये लव मैरिज और उसमें फंसे हुए उनको भी सावधान होना चाहिए, कम से कम भक्तों को तो होना ही चाहिए। जो समाज का और वो और हमारे माता पिता जो करते हैं वो बहुत अच्छा है, आप ये शरीर का और ये ज्यादा लटक मटक मत देखिए, फंस जाओगे। सुख के लिए शादी करोगे और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम समाज में है या वो बहुत अच्छा है। तो सुख मिलता नहीं है, सुख के लिए कर्म करते हैं लेकिन दुख ही निवृत्ति नहीं होता है, तो सुख कहाँ से मिलेगा है? तो नते सुखम, उससे सुख मिलता नहीं, वान्य दुख आरम्भ, और दुख की कमी नहीं होती, बल्कि एक आचार्य तो ऐसा लिखते हैं कि जैसे ही वो सुख के लिए कार्य प्रारंभ करता है उसके पहले बनिस्पत थोड़ा सुखी होता है लेकिन दुख प्रारंभ हो जाता है। जैसे निश्चय किया कि अब मुझको बस डॉक्टर बनना है, बस रात में नींद भी हराम, कहीं जाना भी हराम, खाना पीना भी ठीक नहीं, बस नींद भी नहीं करना, बस उसी के पीछे पर दुख चालू हो जाता है और उस दुख को सुख मानता है। जैसे ही उस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है दुख चालू हो जाता है, या पहले का भी कुछ सुख है वो भी समाप्त हो जाता है। ये इन शब्दों के ये ऐसे ये अर्थ हैं। विदंती भूयस्तत्व एव दुखम, विदंती, वो सुख तो नहीं मिलता है उल्टा दुख आता है, क्योंकि एक कर्म हमारा किया हुआ एक कर्म दूसरे 25 कर्मों को करने के लिए बाधित करता है। ये सिद्धांत जानना चाहिए कर्म, आप एक कर्म करते हैं वो आपको 25 कर्मों के लिए बाध्य करता है कि आपको करना है। शादी किया है तो बोलेंगे नहीं बहुत पढ़ी लिखी बहुत सुंदर ऊंच घराने की लड़की के शादी करूंगा तो ठीक, लेकिन जैसे आप उससे शादी करते हो उसकी मांग डिमांड पूरा करने के लिए आपका पहले का सुख भी खत्म हो जाता है। इसे अच्छा कोई साधारण से भी शादी किया होता तो कम से कम, लेकिन जैसे उस सुख के जाल में फंस कर वो करता है उसका पहले का सुख भी खत्म हो जाता है। इसलिए हे प्रभु मैं आपसे प्रश्न करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि यदेत्र युक्तम भगवान बदेन, भगवान आप समर्थ हैं इसका उपाय बताने में, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि इसके निवारण के लिए व्यक्ति क्या करे, कैसा जीवन जिए कि व्यक्ति दुख से उसका दुख निवारण हो जाए और वो सुखी हो जाए। बाकी मैं कहता हूं कि भौतिक काम कर्म के द्वारा या किसी भौतिक उपाय से जीव सुखी होगा ये नहीं हो सकता। रामायण में तो लिखा गया है कि जैसे समुद्र को मत कर तेल नहीं निकाला गया लेकिन निकाल ले कोई, या बालू को पीसकर कोई घी निकाल ले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भगवान से विमुख होकर कोई सुखी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये वो है, ये सिद्धांत आपके लेखा चौपाई है, चौपाई प्रभु जी, ये सिद्धांत अपेल ऐसा बात नहीं, ये सिद्धांत अपेल है, मतलब इसको कोई ध्वस्त नहीं कर सकता, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, नहीं हो सकता जीव सुखी। हाँ तो इस प्रकार आप कोई उपाय बताइए कि ऐसा कैसे जीवन जिए कि वो सुखी हो जाए। तो वास्तव में बहुत बहुत शास्त्रों में इसके में प्रहलाद महाराज इस जगह इसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं दुख का निवारण के लिए, कि जैसे प्रभुपाद जी ने भी एक जगह कहा कि मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, भौतिक दुख का या भौतिक समस्याओं का समाधान भौतिक कर्म नहीं है, नहीं हो सकता इससे, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिकता के द्वारा आप भौतिक समस्याओं का हल कर सकते हैं, बाकी भौतिक तरीके से हल हो ही नहीं सकता। हमारे सामने लिस्ट है कि कोई कह दे कि नहीं भौतिक, जैसे बीमारी है रोग है, रोग का निवारण हम मुक्ति चाहते हैं तो वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास की, बहुत इसमें उन्नति की है, बहुत हॉस्पिटल हैं, बहुत इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, बहुत यंत्र आ गए हैं, लेकिन क्या इसका निवारण हुआ? उल्टे रोग बढ़ गए, उल्टा रोग बढ़ते जा रहे हैं, निवारण नहीं हो रहा किसी भी आप भौतिक दुख का देख। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दुख औषधि अपि दुखम, दुख औषधि, दुख जो भौतिक दुख है उसको भौतिक तरीके से आप समाधान चाहते हैं, वो भौतिक तरीके से जो समाधान है वो उससे भी बहुत कष्टमय है, उससे भी दुखमय है। आप देखिए कि दरिद्रता, दरिद्रता एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन धन कमाना ये उससे भी बड़ा दुख है। अगर आप नहीं मानते हैं तो सुबह 8 बजे से 9:30-10 बजे तक मीरा रोड स्टेशन खड़े रहिए, खाली खड़े रहिए। हम देखते हैं एक व्यक्ति चढ़ा तो उसको चढ़ने के लिए कितना स्थान जगह मिला मालूम है, उसके पांव की अंगुलियां खाली ही रेल के पायदान पर टिकी, पांव की अंगुलियां, और ऊपर से वो ट्रेन का छपरा पकड़ा, और दूसरा व्यक्ति उसके पीछे प्रयास कर रहा है चढ़ने के लिए। तो विचार करें ये कैसे चढ़ेगा, उसको तो खाली अंगुलियां टिकी हैं और वो हाथ से पकड़ा है, और हमको लगता है ये गिर जाएगा, लेकिन वो छोड़िए, वो दूसरा दो व्यक्ति उसके पीछे प्रयास कर, आगे चल आगे चल, तो कैसे होगा। तो दुख औषधि अपि दुखम, मारा जाना, बॉस का धक्का खाना ट्रेन में, क्या कूनी मारते हैं, क्या क्या लोग बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, तो और धन कमाने के लिए कितना दुख, और जीकेसी में जाने के बाद तो और बढ़ गया। हम सोच रहे थे कि वहां जाकर हम सुखी हो जाएंगे, ये जीकेसी डायमंड वालों के लिए है। हम सुन रहे हैं भक्तों से, अरे प्रभु जी हालत खराब कर दिया इसने तो, न जाने का ठिकाना, ना आने का ठिकाना, ना कुछ, बहुत मुश्किल हो गया है। वो गाड़ी में धक्का खाते थे तो समझे अभी नजदीक आ गया, अरे वो तो और कठोर हो गया, इससे पहले तो और स्थिति खराब हो ही गई थी उठमना हो के, और अभी और दुख बढ़ गया। सरकार ने या किसी ने प्लानिंग किया था कि यहाँ आकर हीरे वाले थोड़े सुखी हो जाएंगे, और हीरे वाला बेचारे क्या बोल रहे, भागो इधर से और आगे कहीं और कुछ इसका उपाय, वो नहीं सकता कोई उपाय, सारे जो उपाय भी हैं दुख को कम करने के वो भी इससे दुखमय है। एक बार मैं एक हॉस्पिटल दवाखाना में गया था, तो हॉस्पिटल में एक लड़की बैठी थी, छोटी लड़की, उसको बुखार होगा तो वो बैठी थी, तो बुखार ना पा तो बुखार है तो बुखार था तो वो चुपचाप बैठी थी, लेकिन डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इसको एक इंजेक्शन लगा दो, तो वो नर्स भी बाहर आके उस लड़की के सामने ऐसा वो इंजेक्शन भरने लगी, बोतल में भरने लगी, तो उसने मम्मी को पूछा कि ये मेरे को लगाएंगे, बेटा हाँ, जैसे ही कि मेरे को लगाएंगे तो वो चिल्लाने लगी, बुखार से नहीं चिल्ला रही थी, बुखार का इलाज जो करना उसके लिए, नहीं मम नहीं नहीं, तो उसने पकड़ा, वो डॉक्टर ने कहा और पकड़ो, दो जन और पकड़ने लगे, तो पकड़ा और वो चिल्ला रही है। मैं सोच रहा था कि इतना तो वो बुखार से भी नहीं चिल्ला रही थी, इसने इसका उपाय, तो बीमारी दुख है लेकिन बीमारी का उपाय डॉक्टर को मूर्छित करना पड़ता है। बोलिए कि मूर्छित किए बिना इसका ऑपरेशन कर दो, फिर पता चलेगा कि दुख का उपाय कैसा है। ये शास्त्र के या हमारे महाभागवतों के वचन कितने सत्य और कितने प्रमाणिक हैं, कि दुख की उपाय जो इस संसार में वो इससे भी दुख में है, इसलिए हे प्रभु आपकी शरण ही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आज ये कुछ अनाउंसमेंट हैं। पहला अनाउंसमेंट गौर कथा का है, तो 18 तारीख से ये गौर कथा, 18 से 24 फरवरी तक गौर कथा शाम को 6:30 से 9 बजे तक भक्तिवेदांत हॉल में होगा। हिज ग्रेस सुधांशु शेखर प्रभु के द्वारा मुखारविंद से ये गौर कथा अमृत का पान होगा, तो आप सभी इसका लाभ उठाइए। कथा के बाद सभी के लिए बहुत सुंदर प्रसाद भी है, वो भी पा सकते हैं। साथ साथ में आज का प्रसाद जो है श्रीमान मदन सिंह प्रभु की तरफ से है, तो हम पूरा भक्त समाज मदन सिंह प्रभु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर उनके परिवार से या वो यहाँ कोई उपस्थित हो तो कृपा करके यहाँ आइए और प्रभु जी से कुछ भेंट स्वीकार करिए। हाँ, आप जानते हैं कि मंदिर में नित्य सेवा चल रहा है, तो नित्य सेवा से जो भी जुड़ना चाहते हैं वो कृपा करके टेबल से कृष्ण शिष्य प्रभु से मिलिए और नित्य सेवा से जुड़िए, मतलब भगवान की नित्य सेवा कीजिए। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं कृपा करके मिलिए, और नित्य सेवा से जो जुड़े हुए हैं उनका अगर कुछ डोनेशन बाकी है तो कृपा करके उनसे भी विनती है कि वे अपनी नित्य सेवा प्रदान कर लें नियमित रूप से। और इनके प्रभु कोई तो